Om Shanti. वर्तमान समय का तीव्र पुरुषार्थ एकाग्रता, हम सभी काफी समय से ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। अब स्वयं को ये प्रश्न हम करें कि बाबा से हम ऑनलाइन जुड़े हुए हैं और कितना समय हम बाबा से ऑनलाइन जुड़ते हैं, कनेक्टेड रहते हैं। 21 जन्मों की हम बच्चों को बादशाही प्राप्त करनी है और ये 2021, तो इसमें हमारा क्या पुरुषार्थ रहेगा? सबसे पहले तो हमें यही कार्य करना है कि जो भी हमारे सारे विकर्म है 63 जन्म के, वो सारे विकर्म हमें भस्म करना है, नष्ट करना है, जीरो लेवल पे लेके आना है। तो वो जल्दी से हम कैसे कर पाएंगे? समय तो हमारे पास वही है जो सबके पास है, वही 24 आवर्स होते हैं। और ये हमारा योगी जीवन है, तपस्या का जीवन है, योगी जीवन माना ही तपस्या का जीवन, अर्थात साधना का जीवन। तो ये जीवन हमारा सफल कैसे हो? लौकिक में भी हम दुनिया में देखते हैं, कोई भी कार्य में सफलता प्राप्त करनी होती है तो बहुत एकाग्र बुद्धि, एकाग्र मन होकर के वो कार्य पूर्ण करते हैं। चाहे कोई चित्रकार हो और चित्र बनाता हो, चाहे कोई सिंगर है, गीत गाता है, चाहे कोई इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, अपनी पढ़ाई पूर्ण करते हैं, चाहे कोई साइंटिस्ट है, कुछ नवीन इन्वेंशन करते हैं साइंस की, सभी का हम देखते हैं तो एकाग्र मन और बुद्धि होता है, तब वो सफलता से कार्य अपना पूर्ण कर सकते हैं। ठीक उसी ही रीति से बाबा ने हमें समय प्रति समय बहुत सुंदर बातें एकाग्रता की मुरली में कही है कि उनकी है साइंस की इन्वेंशन जो कुछ नवीनता लाती है, और हम बच्चों की इन्वेंशन है स्पिरिचुअल इन्वेंशन जो नवीनता लाती है, एकाग्रता का बहुत ही फायदा है। बाबा ने कहा कि दुनिया के अंदर आत्मिक शक्ति के आधार पर सेमी प्योर आत्माएं होती हैं, तो भी वो अपनी आत्मिक शक्ति के कारण दूर बैठी हुई आत्माओं का आह्वान करती है और उसको चमत्कार दिखा सकती है, और ऐसे होता है। और वो सिर्फ एक आत्मा होती है, लेकिन बाबा के हम बच्चे, हम तो बहुत सारे बच्चे हैं बाबा के, हमारी तो संगठन की भी शक्ति है और हमारे पास तो परमात्मा शक्ति है। बाबा ने कहा कि ज्ञान सूर्य की शक्ति है आपके पास, तो क्या ये संगठन शक्ति और एक एक की शक्ति, परमात्मा शक्ति, वो क्या चमत्कार नहीं दिखा सकती है? वो भी चमत्कार दिखा सकती है। दूर बैठी हुई कोई भी मनुष्य आत्मा है, उसका हम बच्चे भी आह्वान कर सकते हैं और उसको सहयोग दे सकते हैं। दूर बैठी हुई कोई भी आत्मा है, उसको हम बहुत अच्छी तरह से शांति का अनुभव करा सकते हैं। दूर कोई है बहुत, लेकिन एकाग्रता की शक्ति से हम उसका आवाज दूर से भी कैच कर सकते हैं और उसका कल्याण भी कर सकते हैं। तो ये है परमात्मा शक्ति। दूसरी महत्व की बात बाबा ने कही है कि भक्ति मार्ग में क्या करते हैं, व्रत लेते हैं कि आज हमें ये भोजन नहीं करना है, फास्टिंग करते हैं, उपवास करते हैं और बहुत उसमें स्ट्रिक्ट भी रहते हैं, दृढ़ता से करते हैं। बाबा के हम बच्चे भी व्रत धारण करें। बाबा ने कहा कि व्यर्थ विचार, व्यर्थ वाणी और व्यर्थ कर्म वो हम भी ना करें, ये हम व्रत ले। तीसरी बाबा ने बहुत महत्व की बात कही है कि सागर के ऊपर हम किनारे देखते हैं, लहरों में देखते हैं तो बहुत ही हलचल होती है, लेकिन सागर के तले में हम देखते हैं तो बहुत ही शांति होती है। ठीक उसी ही प्रकार से हम बच्चे भी कर्म योगी हैं, कर्म हम करते रहते हैं, तो जब हम कर्म करते हैं तो ऐसे लगता है कि हलचल हो रही है, लेकिन ये जो हलचल होती है ये हलचल ऊपर ऊपर की होती है, लेकिन हमारे अंदर आंतरिक रीति से हम देखें तो वो हमारा अगर एकाग्रता की शक्ति है तो बहुत ही शांत रहेगा, जैसे कि सागर का तला। चौथी महत्व की बात बाबा ने कही है कि सागर में अंदर जाकर के कोई देखता है, मर्जीवा अंदर चला जाता है तो उसको क्या प्राप्त होता है? एकदम नीचे जब चला जाता है तो उसको रत्न प्राप्त होते हैं, हीरे मोती प्राप्त होते हैं। हम बच्चे भी जब आंतरिक पूर्ण रीति से हम अंतर्मुखी में चले जाएं, अंतर्मुखी हम बन जाएं, तो हम बच्चे भी अनुभव के हीरे मोती प्राप्त कर सकते हैं। और न सिर्फ हम प्राप्त कर सकते हैं लेकिन औरों को भी अनुभव के हीरे मोती, हमारे ज्ञान के जो है वो औरों को भी हम अनुभव करा सकते हैं, इतनी शक्ति है। पांचवी बात कही है कि नवरात्रि के दिन होते हैं तो देवियों का बहुत गायन और बहुत पूजन होता है। उस समय देवियों का जो हाथ होता है वो हस्त को कैसे दिखाते हैं, ऐसे वरदानी रूप में दिखाते हैं और एकाग्रता दिखाते हैं संकल्प की और दृष्टि की देवियों में। तो हम भी बाबा के बच्चे हैं, हम भी क्या करें, दृष्टि और संकल्प को हम एकाग्र करें तो बिल्कुल हम औरों को भी वरदान जो है वो दे सकते हैं। छठी बात बाबा ने कही है कि जब वाणी की सेवा करते हैं, कर्मणा में आकर के हम सेवा करते हैं तो उसमें कभी कभी किसी किसी को नाम मान और शान के कारण आपस में किसी और के साथ टकराव भी हो सकता है, परंतु जहां एकाग्रता की शक्ति है वहां पर एक रूहानी शक्ति होती है, और जहां रूहानी शक्ति होती है वहां पर शक्ति के वाइब्रेशंस हम औरों को बहुत ही सहज रीति से देते हैं, और इसमें कोई भी टकराव आदि की बात, बिल्कुल किसी के भी साथ संघर्ष की बात, कॉन्फ्लिक्ट की बात बिल्कुल नहीं होती है। सातवीं बात बाबा ने कही है कि दुनिया में हम देखते हैं तो बहुत प्रकार की हलचल होती है, चाहे राजनीति में देखते हैं, चाहे किसी का कर्म भोग होता है, चाहे कोई पदार्थों की प्राइस जो है वो ऊपर नीचे होती है, चाहे करेंसी नोट्स जो होती हैं, चलन जो होता है उसके कारण कुछ हलचल होती है। लेकिन ये सारी हलचल में भी जिसकी एकाग्रता की शक्ति है वो कभी भी कोई भी परिस्थितियों के कारण हलचल में नहीं आते हैं, और वह अपनी स्थिति को बिल्कुल स्थिर रख सकते हैं। उसके ऊपर हलचल की कोई भी प्रकार की इफेक्ट जो है वो जरा भी नहीं होती है। लंदन में बहुत प्रेस्टिजियस एक हॉल है, अल्बर्ट हॉल। तो उस अल्बर्ट हॉल के अंदर आदरणीय अपने शांतिदूत जानकी दादी जी थे, और साथ में यूरी गिलर थे जो एकाग्रता की शक्ति के लिए बहुत नामी ग्रामी थे। तो वो बैठे हुए थे और उनके सामने मूंग और चना रखा, हमने वीडियो सारा देखा था यहां पर मीटिंग में, लंदन से वीडियो आई थी, और उसने दृष्टि दिया, कॉन्सेंट्रेट किया मूंग और चना पर, और उसने तीन बार कहा ग्रो ग्रो ग्रो, आप बढ़ जाओ, आप बढ़ जाओ, आप बड़े हो जाओ, बढ़ जाओ, और वो पूरा स्प्राउटेड बना, अंकुरित हो गया। वैसे तो दो दिन लगता है ना, वैसे तो दो दिन लगता है, लेकिन उसने अपनी दृष्टि दे करके और संकल्पों को एकाग्र करके उसने उसको बढ़ा दिया। तो ये कौन सी शक्ति थी? एकाग्रता की शक्ति थी। तो दुनिया में भी ये शक्ति इतना कार्य करती है। बाबा ने कहा कि चलती हुई चीज को एकाग्रता से रोक सकते हैं, या दूर कोई चीज है वो चीज को नजदीक बुला सकते हैं, कोई ऐसी जड़ चीज है ऐसी चीज को भी नजदीक बुला लेते हैं दृढ़ता की एकाग्रता की शक्ति से। तो क्या बाबा के बच्चे वो क्या एकाग्रता की शक्ति से क्या नहीं कर सकते हैं? पूरा विश्व कल्याण का कार्य बहुत सहज रीति से बाबा ने कहा कर सकते हैं। सिर्फ बात यह है कि हम बच्चे जो संकल्प करना चाहे, जिस संकल्प में हम स्थित होना चाहे, जितना समय हम स्थित होना चाहे उतना समय, जैसे हम स्थित होना चाहे उसमें हम एक ही श्रेष्ठ और शुद्ध संकल्प में हम स्थित हो जाए, फिर वो शक्ति कमाल कर सकती है। तो ऐसी शक्ति हमें प्राप्त करनी है, इतने सारे फायदे हैं। जो चीज जैसी है वैसी वो चीज इतनी स्पष्ट दिखाई पड़ती है कि हमारा टाइम उसमें बिगड़ता नहीं है, माना परखने की शक्ति हमारे में बहुत अच्छी तरह से बढ़ जाती है। और जब परखने की शक्ति बढ़ जाती है तो निर्णय करने की भी शक्ति बढ़ जाती है। तो बाबा ने कहा कोर्ट में क्या करते हैं, क्या दिखाते हैं? तराजू दिखाते हैं, वो कितना बैलेंस में दिखाते हैं, तो वो एक निर्णय शक्ति है। तो हम बच्चों में वो एकाग्रता की शक्ति से वो निर्णय शक्ति आ जाती है, और वो निर्णय शक्ति के कारण कोई भी कार्य जो है वो सही वक्त पर पूर्ण करके हमें सफलता बहुत अच्छी तरह से उसमें निर्णय शक्ति के कारण प्राप्त होती है और सेवा में भी बहुत अच्छी तरह से हम सफल हो जाते हैं। साथ साथ एक शक्ति सिर्फ है एकाग्रता की, लेकिन उसके कारण और भी सारी शक्तियां हैं, वो सारी शक्तियां हमें प्राप्त होती है। एक शक्ति दूसरी सारी शक्तियों को भी लेकर के आती है। करना क्या है, हमें फोकस करना है, कोई भी एक पर फोकस करना है। और जब हम फोकस करते हैं तो वो बहुत पिन पॉइंटेड होता है। जैसे योग में हम अग्नि प्रज्वलित करते हैं, आप देखिए कि पानी जब हम गर्म करते हैं तो कैसे पानी गर्म करते हैं। कई लोग पीने का पानी गर्म करते हैं, उस समय कितना गर्म करते हैं, थोड़ा सा गर्म किया फिर ठंडा हो गया, फिर थोड़ा आपने गर्म किया फिर ठंडा हो गया, ऐसे नहीं करते हैं। लेकिन क्या करते हैं, पानी को एकदम अच्छी तरह से बॉयल करते हैं, उबालते हैं और फिर अपने आप बाद में वो ठंडा होता है, लेकिन एक बार तो उसको एक साथ में उबालते हैं और प्रज्वलित करते हैं अग्नि को। तो एकाग्रता की शक्ति अर्थात योग में हमें योग अग्नि को पूर्ण रीति से प्रज्वलित करना है, प्रकाशमान करना है, तो योग अग्नि क्या होनी चाहिए, भड़कनी चाहिए, धधकनी चाहिए, प्रकाशमान होनी चाहिए, तब हमारे विकर्म जो है सारे वो उसमें भस्म हो जाते हैं। तो इसीलिए चाहिए फोकस। तो फोकस और पिन पॉइंटेड एकाग्रता, ये दोनों की बहुत आवश्यकता है, ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। एकाग्रता में, जब हम एकाग्रता शब्द बोलते हैं तो एक को हमें हमेशा क्या देनी है, अग्रता देनी है, प्रायोरिटी देनी है, कि महत्वपूर्ण इतने सारे कार्य है उसमें और ज्यादा अति महत्वपूर्ण कार्य क्या है। तो एक को जब अग्रता हम देते हैं तो वो कार्य हम सबसे पहले करते हैं, क्योंकि हमारे लिए वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। और जब एकाग्रता शब्द बोलते हैं तो उस समय हमें ऐसे महसूस होता है कि एकाग्रता अर्थात मानसिक एकाग्रता, लेकिन सिर्फ मानसिक एकाग्रता नहीं है, एकाग्रता के बहुत सारे प्रकार है। सबसे पहली एकाग्रता है वैचारिक एकाग्रता, अर्थात विचारों की एकाग्रता। सुबह के क्लास में हम बैठे हैं, बाबा की मुरली सुन रहे हैं, एक घंटा हम बैठे हैं क्लास में समझ लीजिए, तो पूरा एक घंटा हमारा मन जो है वो पूरा मुरली में होता है, क्योंकि मन का एक स्वभाव है घूम करके आना। तो क्या मन कहीं घूम करके आता है, यहां बैठे 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 हैं यहां पर शांतिवन में, और यहां बैठे बैठे ऐसे तो नहीं कि महाराष्ट्र में या मुंबई में या जहां भी रहते हैं, दिल्ली में जहां भी रहते हैं, वहां पर मन घूम करके वापस आ गया, ऐसे तो नहीं होता है। बिना रेफरेंस, बिना कुछ मौका, बिना कुछ संबंध, बेमौका कोई भी बात हमने याद कर ली उस समय, तो हमें उस समय हमारे मन को सीमित करना है कि हमारा जो मन है वो सिर्फ सिर्फ और सिर्फ मुरली में ही रहे। और ये तब होगा जब एकाग्रता के तीन आधार है, उस तीनों आधार पर हमारा बहुत ही अटेंशन होगा। एकाग्रता का पहला आधार है साइलेंस की शक्ति। क्या हमने अपने स्वयं के मन को उस समय शांत कर दिया, मन को कह दिया कि अभी हे मन, अभी सिर्फ मुरली सुनना ही हमारा कार्य है और इसीलिए ही हम घर का सारा कारोबार पूर्ण करके विशेष मुरली सुनने के लिए, मुरली क्लास करने के लिए हम सेवा केंद्र पर आए हैं। क्या मन को हमने ऑर्डर इस प्रकार से कर दिया? नहीं तो मन बराबर घूमता फिरता रहेगा, भटकता रहेगा मन, क्योंकि उसकी तो आदत है। और मन क्या करता है? सिलेक्शन करता है। जो याद करना है वो याद करता है, जिसको भूलना होता है उसको वो भूल जाता है। बिल्कुल मन सिलेक्शन करता है, पसंदगी करता है। तो हमारी सिलेक्शन क्या होनी चाहिए उस समय? बहुत ही श्रेष्ठ सिलेक्शन उस समय हमारी रहे। नहीं तो मुरली के समय हम सारे दिन में क्या क्या कार्य है वो लिस्ट बनाने के लिए बैठ जाएंगे और हम जिस कार्य के लिए आए हैं उस मुरली से हमें कितना रिफ्रेशमेंट मिलती है, मन हमारा कितना ताजगी का अनुभव करता है, मन हमारा शक्ति प्राप्त करता है, वो तो सारा रह ही जाएगा। जिस कार्य के लिए हम आए हैं, जिस कार्य के लिए हमने समय दिया है, वो कार्य तो फिर होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि एकाग्रता की शक्ति की वहां पर कमी हो गई। इसीलिए वैचारिक एकाग्रता में हमारे विचारों की एकाग्रता होना बहुत आवश्यक है। नहीं तो क्या होता है कि मुरली से हम प्राप्ति कर रहे हैं तो एक साइड से हम ऊपर से प्राप्ति कर रहे हैं और दूसरी साइड से हमारा लीकेज हो रहा है, छेद होता है, तो कैसे वो चीज सारी निकल जाती है। तो लीकेज भी हो रहा है और ऊपर से हम प्राप्ति भी कर रहे हैं, तो दोनों है हमारा, तो हमारे पास फिर जमा कैसे होगा? जमा तो होगा ही नहीं। दूसरे प्रकार की एकाग्रता है, वो एकाग्रता है संबंधों की एकाग्रता, संबंधात्मक एकाग्रता। हम देखते हैं कि हर एक के अपने अपने संबंध है, संबंधों का ताना बाना देखते हैं तो लंबा चौड़ा बहुत होता है, लेकिन हमें संबंध निभाना भी है, लौकिक संबंध। लेकिन निभाने के साथ साथ हमें क्या करना है, कौन से संबंध हमको निभाने हैं? जो संबंध हमारे बहुत 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 आवश्यक है वो संबंध हमको निभाने हैं। एक व्यक्ति कहीं जा रहा था तो उसको किसी ने पूछा कि आप कहां जा रहे हो, तो कहा मेरे मामा के फलाने के फलाने के फलाने की शादी में जा रहे हैं। माना कहां कहां का कहां? तो जैसे एक माला होती है, वो माला के मोती होते हैं, वो मोती सारे जब बिखर जाते हैं चारों ओर तो कैसा महसूस होता है, और एक माला होती है वो कैसे लगती है? तो संबंधों का इस प्रकार से है कि संबंध सारे अलग अलग रीति से बिखर जाते हैं। तो एकाग्रता के बदले हो जाती है व्यग्रता, तो वो हमें एक माला के मोती की तरह उसको एक माला के इकट्ठे करना है। अर्थात जो संबंध जरूरी है वो संबंध हम जरूर निभाएं। और वैसे भी कहा है कि सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, तो सारे संबंध हमें किसके साथ बांधने हैं, अभी किसकी शरण में हम बचे हैं? हम शिव बाबा की शरण में हैं। तो सारे हमारे जो भी संबंध है वो सारे संबंध हमारे बाबा के साथ है। हम बाबा की महिमा करते हैं, उसमें हम क्या महिमा के गीत गाते हैं? 12 दिसंबर 1983 की मुरली में, अव्यक्त मुरली में बाबा ने कहा कि बाबा की महिमा के गीत बच्चे एकाग्र होकर गाते रहो, और बाबा की महिमा ही करते रहो, बाबा ने कहा, ही शब्द कहा, माना हाईलाइट किया, माना जोर दिया, इम्फेसाइज किया इस बात करके, बाबा की महिमा के ही गीत गाते रहो। तो बाबा के लिए हम हमेशा कहते हैं ना, मात पिता बंधु सखा स्वामी शिव बालक साजन सजनी पिता शिक्षक गुरु सदगुरु सदगति दाता मुक्ति दाता जीवन मुक्ति दाता भाग्य विधाता दिव्य दृष्टि दाता क्षमा माशुक करण करावनहार इंश्योरेंस मैग्नेट सुप्रीम जस्टिस परम रक्षक क्षमा के सागर करुणा के सागर रहम के सागर। तो ये सारी जो भी महिमा है वो महिमा तो बाबा की है, तो हम कौन से गीत गाए? एकाग्र हो करके हमेशा हम बाबा के ही गीत गाते रहे, तो ये है हमारी संबंधों की एकाग्रता। तीसरी एकाग्रता है ऐच्छिक एकाग्रता, अर्थात इच्छाओं की एकाग्रता। इच्छाएं जीवन में हर एक को होती है। वैसे तो दुनिया में कहा जाता है कि सागर के किनारे हम रेत के जितने कण देखते हैं इतनी मनुष्य की इच्छाएं होती हैं, एक पूरी होती है और दूसरी खड़ी हो जाती है। लेकिन अभी हमारी इच्छा कौन सी होनी चाहिए? वैसे बाबा ने कहा, इच्छा मात्रम अविद्या। इच्छा क्या है उसकी हमें अविद्या माना नॉलेज ही न हो। परंतु वो कौन सी इच्छा जो भगवान से मांगते रहते हैं दुनिया में कि हमें ये दे दो हमें वो दे दो, लौकिक इच्छाएं भी मांगते रहते हैं पूर्ण करने के लिए। तो अभी हमारी इच्छा कौन सी होनी चाहिए? इच्छा की भी पराकाष्ठा है, इच्छाओं की भी गुणवत्ता है। इच्छा हमारी कौन सी हो कि बाबा ने हमें कहा है कि हम बाबा के समान बने, हम अव्यक्त फरिश्ता बने, हम गुणवान बने, हम निस्वार्थ सेवाधारी बने। तो ये सारी जो है इच्छाएं, वो इच्छा बहुत ही श्रेष्ठ इच्छा है। तो श्रेष्ठ इच्छा तो हमें पूर्ण करनी है और लगन में मगन उसमें हो जाना है। बिगर कोई इच्छा भगवान को याद करना, बाबा को याद करना, वो सर्वश्रेष्ठ याद है, जिसमें कोई भी इच्छा के बिगर हम याद करते हैं भगवान को, बाबा को। वैसे कहा जाता कि इतनी सारी इच्छाएं होती है, माना मनुष्य दो अश्व के ऊपर सवार हो जाता है। तो जो मनुष्य दो अश्व के ऊपर सवार होता है, दो घोड़े के ऊपर सवार होता है, उसकी हालत क्या होती है? न यहां के न वहां के होते हैं। सिकंदर ग्रीस देश का था, वहां से अफगानिस्तान से कश्मीर से होकर के जब औरस के साथ लड़ाई में जीत गया, उसके बाद वो भारत देश के अंदर आया। उसके पहले उसने वहां पर ग्रीस देश में उनका एक गुरु था, उसके पास वो जाता है कि मैं भारत देश जाने वाला हूं, तो आपके लिए कुछ वहां से लेकर के आऊं? तो जब वो गुरु के पास जाता है तो वो कहता है कि भारत आध्यात्मिक देश है, तो भारत से मेरे लिए एक आध्यात्मिक गुरु वहां से लेकर के आना। तो उसने कहा ठीक है, जैसे आपकी इच्छा। तो यहां पर जब वो भारत देश में आता है तो उस समय कई स्थान पे पूछता है कि यहां पर कौन आध्यात्मिक गुरु योगी, कौन यहां पर बहुत अच्छे हैं और बड़े हैं। तो उसको बताते हैं सभी के यहां पर है, लेकिन ये भी साथ साथ कहते हैं कि आप इनके पास खुद जाना, किसी और को नहीं भेजना, कोई सैनिक को नहीं भेजना, आप स्वयं जाना, वो बड़े हैं। तो कहा ठीक है मैं स्वयं जाता हूं, और वो चला जाता है, उसको प्रणाम करता है, नमस्ते करता है उसको, और वहां खड़ा रहता है। वो अपनी योग साधना में होता है, वो योगी ये काफी समय खड़ा रहता है वहां पर। फिर उसके बाद जब योगी का ध्यान जाता है तो वो पूछता है सिकंदर को कि आप किस कार्य के अर्थ यहां पर आए हो। तो सिकंदर उनको कहता है कि मेरे देश के अंदर मेरे गुरु ने यहां से गुरु के लिए कहा है, तो आप हमारे देश में चलिए। तो वो कहता है भारत का योगी कि मैं यहां ही ठीक हूं। तो सिकंदर उसको कहता है कि मैं आपको रहने के लिए महल दूंगा, महल माड़ी आपको दूंगा, मैं आपको इतना धन दूंगा। फिर भी वो कहता है मैं यहां ही ठीक हूं। फिर कहता है मैं इतने प्रकार का आपको भोजन दूंगा, आपको हाथी घोड़ा पैदल वो भी आपके पास रहेगा, आपको राज्य में से जो चाहिए वो आपके पास रहेगा, आप जो कहेंगे वो आपको मिलेगा। वो कहता जाता है, बढ़ाता जाता है, और योगी भारत का कहता है मैं यहां ही ठीक हूं, मैं यहां ही ठीक हूं। आखिर लास्ट में जब सिकंदर जब बहुत बोलता है ये देता हूं वो देता हूं, तब ये कहता है मुझे तुम्हारे से कुछ नहीं चाहिए, मेरी इच्छा यहां ही रहने की है और मैं यहां ही रहूंगा। तो ये क्या था कि इसकी स्वयं की भारत के योगी की इच्छा शक्ति थी। तो ये है इच्छा जो कार्य करती है। आप सभी को बहुत अच्छी तरह से महाभारत का जो प्रसंग है वो पता है कि कैसे श्री कृष्ण लेटे हुए थे और सबसे पहले दुर्योधन आते हैं तो वो माथे के पास खड़े रहते हैं, बाद में अर्जुन आते हैं तो वो जगह नहीं है, स्थान नहीं है, तो वो पांव के पास खड़े रहते हैं, और सबसे पहले जब वो आराम में होते हैं श्री कृष्ण तो आंखें खोलते हैं तो सबसे पहले देखते हैं दुर्योधन को। लड़ाई होने वाली थी तो वो समझ जाते हैं कि कुछ मदद के लिए आए हैं, तो कहते हैं आपको क्या मदद चाहिए, आप किस कारण यहां आए हैं बता दीजिए। तो तब दुर्योधन कहता है कि मुझे कौन चाहिए, अक्षौणी सेना चाहिए, जितनी भी नारायणी सेना है सारी वो चाहिए, क्योंकि उसकी इच्छा वो थी। और फिर वो समझ लेता है कि जीत तो मेरी ही होने वाली है, क्योंकि इतनी सारी मेरी सेना हो गई, अभी इसके लिए तो कोई सेना बची नहीं अर्जुन के लिए। और फिर जब अर्जुन को पूछते हैं तो वो कहता है कि मुझे तो आप चाहिए। और जीत हम सभी को पता है कि किसकी होती है, पांडवों की होती है। तो जहां पर भगवान है, हम सभी पांडव है बाबा के बच्चे, जिसकी प्रीत परमपिता परमात्मा से है, और जहां पर भगवान जिसके साथ है तो जीत भी किसके साथ है, हमारे साथ है। तो जब भगवान हमारे साथ है तो बाकी सब इच्छाओं का महत्व नहीं रहता है। तो ये है ऐच्छिक एकाग्रता। चौथे प्रकार की एकाग्रता है लक्ष्यात्मक एकाग्रता, कि हमारा लक्ष्य क्या है। जैसे लक्ष्य वैसे लक्षण, जैसा चित्र वैसा चरित्र कहा जाता है। कहीं घर में रखते हैं ना, कोई गांधी जी का रखते हैं, कोई विवेकानंद का रखते हैं, कोई श्री कृष्ण का रखते हैं। ऐसे ज्ञान में तो पहले चित्र सारे घर में ऐसे रखते हैं बहुत अलग अलग प्रकार से, और उसकी असर भी होती है, जैसा चित्र वैसा चरित्र भी होता है। कितने सालों तक मंदिरों में जाते हैं, पूजा आदि करते हैं, लेकिन लक्ष्य ये नहीं होता है कि हम मनुष्य से देवी देवता बने, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बने। तो जब लक्ष्य नहीं होता है तो फिर वो मन में विचार आता ही नहीं है बनने का। एक श्वान, एक डॉग था, उसको एक व्यक्ति ने क्या किया, उसकी पूंछ सीधी करने के लिए 2 साल तक एक लोहे का एक ऐसे नाल बनाया, रोड बनाया, और उसकी पूंछ को लगा दिया 2 साल तक। लेकिन 2 साल के बाद में जब वो निकाल दिया तो पूंछ ऐसी की ऐसी थी, सीधी हुई नहीं। क्यों? क्योंकि उसका कोई लक्ष्य ही नहीं था सीधा होने का। तो जैसा लक्ष्य है हमारा वैसे ही लक्षण हमारे होंगे। एक व्यक्ति ट्रेन में ट्रैवलिंग करता है पैसेंजर और टीसी वहां पर पहुंचता है, उसको कहता है कि टिकट दिखाइए, तो वो एक बैग में ढूंढता है, वो उसने कहा मैं आता हूँ, दूसरों का चेक करके वापस आता है, तो दूसरी बैग में ढूंढता है, फिर वो टीसी तीसरी बार आता है उसके पास दूसरों का चेक करके, तो वो एक अपने पर्स में ढूंढता है, तो टीसी कहता है रहने दीजिए रहने दीजिए, मुझे आप जेंटलमैन लगते हो, मैंने मान लिया कि टिकट तो आपके पास होगी ही। तो पता है वो व्यक्ति क्या कहता है, टीसी को कहता है अरे टिकट तो मैं इसलिए ढूंढ रहा हूं कि मुझे पता चले कि मुझे जाना कहां है। माना उसको ये भी नहीं पता था कि उसको जाना कहां है, उसका लक्ष्य का पता ही नहीं था। कोई नैया होती है सागर के, सागर से निकलती है, उसका लक्ष्य ही नहीं होता है तो यहां वहां पानी में कैसे लहराती है, कैसे तूफानों में भी फंसती है। तो जीवन के अंदर हमारा लक्ष्य जो है वो बहुत पक्का चाहिए। साकार बाबा अपने जीवन के अंदर पहले बताते हैं कि कैसे बाबा के मन में था, नारायण के प्रति बहुत रिस्पेक्ट था, तो बाबा अपने जेब में नारायण का चित्र रखते थे, अपनी गद्दी के नीचे रखते थे नारायण का चित्र, अपने तकिए के नीचे रखते थे नारायण का चित्र, अपनी सेफ में रखते थे नारायण का चित्र। बाबा को तो बनना था ना नर से नारायण, वो लक्ष्य बहुत पक्का था। विदेश में एक व्यक्ति की कविता है कि बच्चा है, युवा है, उसको जाना होता है एक बर्फ की पहाड़ी पर, एक झंडा लहराना होता है, तो जब वो घर से निकलता है तो बहुत ठंडी होती है, तो उस समय वो बर्फ में चलता है तो उसका शूज का आवाज आता है और ठंडी में और आवाज आता है उसका, तो सभी अपना विंडो खोल करके उसको कहते हैं अंदर आ जाओ तुम, ठंडी जब कम होगी तब तुम चलना। थोड़ा आगे बढ़ता है और लोग कहते हैं यहां पर अंदर आ जाओ, चाय पीके जाओ, कॉफी पीके जाओ, कल जाना, आज की रात रुक जाओ। वो जरा भी किसी का नहीं मानता है, कहीं भी किसी के घर नहीं जाता है, लेकिन उसका जो लक्ष्य था कि मुझे जाकर के वो पहाड़ी के ऊपर झंडा लहराना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे आगे बढ़ना है। तो हम बच्चों का भी लक्ष्य है, हम कहीं भी नहीं रुकते हैं, लेकिन हमारा जो लक्ष्य है कि हम आगे बढ़े, हम आगे बढ़े, हम श्रेष्ठ पद पाने के लिए हम आगे बढ़े, तो ये हमारा जो लक्ष्य है वो बहुत 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 हमारा पक्का होना चाहिए। और जब हम लक्ष्य में स्थिर रहे, लक्ष्य से हमें यहां वहां नहीं जाना है लेकिन लक्ष्य में ही हमें स्थिर रहना है। जैसे बाबा कहते हैं मंजिल पर पहुंचना है, तो हाईवे से हम बहुत जल्दी से पहुंच जाते हैं, हम गलियों में चले जाएंगे तो टाइम लग जाएगा। तो लक्ष्य से ही लक्ष्मण नाम है। लक्ष्मण हमेशा चाहते थे कि मैं राम के साथ ही रहूं और राम के साथ ही वो रहे, तो हमारा लक्ष्य भी यही है कि हम हमेशा बाबा के साथ रहे, हम बाबा के साथ कंबाइन है, कंपनी है और कंपेनियन है, हमारे लिए एक बल एक भरोसा है बाबा। बाबा ने यहां तक कहा कि बच्चे आप तो इतने एकाग्र हो जाओ कि मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई, और मैं बाबा का और बाबा मेरा। यहां तक कहा कि बच्चे इतनी स्मृति हो लक्ष्य की कि वो स्मृति से ही बिल्कुल समर्थी माना शक्ति आ जाए आप में, तो वो स्मृति यही है कि मैं बाबा का और बाबा मेरा, ये हमारा लक्ष्य बहुत पक्का हो। और लक्ष्मण रेखा अर्थात लक्ष्य प्राप्त करने में बीच में कोई भी प्रकार की मर्यादाओं का हमें उल्लंघन बिल्कुल नहीं करना है, तो लक्ष्य हमारा बहुत इजीली जल्दी से हम अच्छी तरह से प्राप्त कर सकते हैं। पांचवी एकाग्रता है बौद्धिक एकाग्रता अर्थात बुद्धि की एकाग्रता। तो हमारी बुद्धि कैसी होनी चाहिए, कंस्ट्रक्टिव निर्माणकारी और सकारात्मक पॉजिटिव। कहा जाता है कन्विक्शन इज कन्वर्जन, माना हमारा जिसमें निश्चय पक्का है, हमारी समझ जिसमें है, हमारी दृढ़ता जिसमें है, वो हम करके ही रहेंगे। एक क्लीन और क्लियर हमारी बुद्धि होनी चाहिए क्लीन और क्लियर। बाबा कहते हैं कि हम प्रीत बुद्धि बचे हैं, हम विवेक बुद्धि बचे हैं, हम ईश्वरीय बुद्धि बचे हैं, डिवाइन बुद्धि हम बचे हैं, हम शार्प बुद्धि है, सालिम बुद्धि है। आदरणीय जानकी दादी जी हमेशा कहते हैं ना सालिम बुद्धि, शार्प बुद्धि बचे हैं हम, सूक्ष्म बुद्धि है, दुरांतेशी बुद्धि है, विशाल बुद्धि है, महीन बुद्धि वाले हैं, रिफाइन बुद्धि वाले हम हैं, निश्चय बुद्धि वाले हैं, निश्चय बुद्धि विजयंती और बेहद की बुद्धि वाले हैं हम। तो ऐसे बाबा के हम बच्चे, बुद्धि हमारी इतनी क्लीन हो और इतनी क्लियर बुद्धि हो, स्वच्छ और शुद्ध बुद्धि हो हमारी, और वो होगा एकाग्रता से। एक टेलर का बच्चा था तो उसके कुर्ता में एक बटन उसका टूट गया, तो वो जाता है पिताजी के पास, वो कहता है और वो पिताजी उसका लगा देता है, तो देखता है कि उस समय उसने टोपी पहनी हुई होती है और टोपी के अंदर उसकी सुई होती है, वो लेता है और सुई धागा और सिलाई कर देता है, फिर जो धागा बचता है उसको पांव के नीचे कैंची होती है, तो पांव के नीचे से वो कैंची लेता है और धागा जो बच जाता है उसको वो कट करता है। तो बच्चा अपने पिताजी को पूछता है कि आपने सुई जो है वो माथे पे रखी है और कैंची आपने पांव के नीचे रखी है, तो उसका पिताजी कहता है उसको कि सुई जो है वो जोड़ने का काम करती है और कैंची जो है वो तोड़ने का काम करती है, इसलिए सुई जो जोड़ने का काम करती है उसको माथे पे रखा जाता है और कैंची जो तोड़ने का काम करती है उसको पांव के नीचे रखा जाता है। छोट तो ये बात से हमें इस बात की महत्व ये है, इस बात का कि हमेशा हमारी बुद्धि कैसी होनी चाहिए, जोड़ने वाली बुद्धि हो, दीवार खड़ी करने वाली नहीं, तोड़ने वाली नहीं, माना मंत्रा बुद्धि न हो, शकुनी बुद्धि न हो, ऐसे कहा जाता है दुनिया में भी। तो हमारी बुद्धि भी बहुत क्लीन क्लियर हम रखें। छठी एकाग्रता है विरामात्मक एकाग्रता, माना विराम देना है, हमें अपने विचारों को विराम देना है। देखिए कोई भी स्टोरी होती है, ऐसे होता है, कविता होती है, उसको विराम देते हैं, फुल स्टॉप करते हैं, नहीं तो व्याकरण में उसका मीनिंग पूरा चेंज हो जाएगा। एक सेंटेंस होता है उसमें भी विराम फुल स्टॉप देते हैं, बिंदु लगा देते हैं, तो तीन बिंदु को तो हमें याद रखना ही रखना है, हम बाबा और ड्रामा। तो विराम हमें अपनी वाणी को देना है। कोई कंटिन्यूअस बोलता है तो कहता है ये अपनी वाणी को विराम देंगे तो बहुत अच्छा है, वो है विरामात्मक एकाग्रता। उसके बाद है सातवां भावनात्मक, भाव की एकाग्रता, भावात्मक एकाग्रता। हमारे भाव कैसे होने चाहिए, शुभ भाव हमेशा हो, कल्याण की हमारी हरेक के लिए भावना हो, वो है एकाग्रता। आप देखिए हमेशा बाबा हमें कहते हैं कि बच्चे खुशी जैसी खुराक नहीं है, खुशी में रहो, आनंद में रहो। हम राजयोगी बच्चे हैं, राज ऋषि बच्चे हैं, कर्मयोगी बच्चे हैं, और भाव हमारा हमेशा क्या हो। आज कोई भी दुनिया में देखते हैं ना, तो कोई भी संन्यास लेते हैं तो नाम अपना चेंज करते हैं, नरेंद्र में से विवेकानंद, मूल शंकर नाम था उसमें से दयानंद सरस्वती, मुक्तानंद, सच्चिदानंद, परमानंद, शिवानंद, सत्यमित्रानंद। आप देखेंगे कि अपने नाम के पीछे संन्यास लेने के बाद में उन्होंने क्या शब्द लगा दिया, आनंद शब्द। क्यों संन्यास लेते हैं, आनंद प्राप्त करने के लिए। तो एकाग्र बुद्धि जहां बाबा ने कहा कि बच्चे होते हैं वहां आनंद ही आनंद है, क्योंकि हम बाबा में एकाग्र है, तो वो है आनंद हमारे लिए। विवेकानंद जी एक बार मेरठ गए थे अपने फ्रेंड के घर में, तो वहां पर फ्री थे 1 वीक के लिए, तो किताबें मंगाई, फ्रेंड को कहा लाइब्रेरी से लाते रहे, 5 दिन की 5 किताब, एक लाते थे वापस देते थे, दूसरे दिन दूसरे से, 5 दिन की 5 किताब ला करके पढ़ी, और बड़ी बड़ी किताबें थी। तो पांचवें दिन फिर लाइब्रेरियन कहता है उसको कि कौन पढ़ता है, या आप इतना जल्दी पढ़ते हो? बोला नहीं, मेरा फ्रेंड है नरेंद्र आया है, वो पढ़ता है। कहता अच्छा, क्या शो करने के लिए लेके जाते हो, दिखावा मात्र के लिए लेके जाते हो? हमको तो ऐसा ही लगता है। बोला नहीं, वो पढ़ते हैं। बोला मैं तो नहीं मानता हूं। बोला ठीक है, मैं उसको लेके आऊंगा। तो उसको लेकर के जाते हैं नेक्स्ट डे। तो जब वो स्वामी विवेकानंद वहां पर जाते हैं, तब तो नरेंद्र नाम था, तो कहा कि आप इतनी पढ़ लेते हो? बोला हाँ, पूछो मुझे। बोला मैं नहीं मानता हूं, लाइब्रेरियन ने कहा। तो बोला पूछो। तो एक किताब उसको जो पढ़ी हुई थी ना, वो लेते हैं हाथ में लाइब्रेरियन, उसको पूछते हैं ये पेज पे क्या लिखा है। तो जैसा लिखा था वैसा एक एक शब्द बता देते हैं, तो उसको मानने में नहीं आता है, फिर भी लगता है ऐसा ही होगा। फिर दूसरी किताब लेता है, तीसरी लेता है, ऐसा तीन किताब लेता है। तीनों का वो बराबर जैसे सारे शब्द थे वैसे वो रिपीट करता है। तो वो इतना आश्चर्य खाता है, वो किताब में क्या है ऐसा? बोला एकाग्रता की शक्ति से मेरा मन उसमें है, मेरी दृष्टि उसमें है, मेरा संकल्प उसमें है, तो इसलिए मुझे याद रह जाता है। वो कहते हैं ना फोटोग्राफिक मेमोरी, पूरी इमेज जो पेज पे लिखी है वो पूरी इमेज उसने कैप्चर किया पूरा, विवेकानंद ने। तो उसने कहा ये कैसे किया आपने? लाइब्रेरियन ने कहा। तो कहा एकाग्रता की शक्ति से मैंने किया। तो इतनी पावरफुल है ये शक्ति। फिर बात आती है प्रीत्यात्मक एकाग्रता। प्रीति हमारी परमात्मा के साथ है, बाकी सबके साथ हमारा आत्मिक स्नेह है। नाव होती है, किनारे से पैसेंजर को लेती है, दूसरे किनारे छोड़ती है, लेकिन वो क्या करती है? डिटेच हो जाती है, फिर एक बार पैसेंजर को छोड़ देती है फिर, और पानी के साथ भी डिटेच हो जाती है। अगर पानी से लगाऊंगा तो नाव क्या करेंगी? पानी को अंदर ले लेंगी। और अगर पानी को नाव से लगाऊंगा तो पानी क्या करेगा? अपने भंवर के अंदर किसको फंसा देगा? नाव को फंसा देगा। तो दोनों में नुकसान है। तो जब किसी से हम अटैचमेंट में आ जाते हैं, लगाव में, तो नुकसान होता है। इसलिए सबसे डिटेच होकर के, सबसे आत्मिक स्नेह रख के, मुख्य हमारी प्रीत शिव बाबा के साथ, वो है प्रीत्यात्मक एकाग्रता। सुखात्मक एकाग्रता है इसके बाद। सुख की सारी जो भी पास्ट की बातें हैं वो हम याद करें। मैं कई बार याद करती हूं तो मन व्यर्थ में जाएगा ही नहीं हमारा। मैं बहुत बार याद करती हूं कि कैसे मैं 1964 में, 58 ईयर्स पहले, कैसे मैं 1963 में साकार बाबा के सामने मुरली सुनती थी। और उस समय बाबा कहते थे सुबह का माजून है ये मुरली। माना मुरली में कितनी ताकत है, ड्राई फ्रूट्स में ताकत होती है, सुबह सुबह लोग खाते हैं कि शक्ति मिले, तो हमारी मुरली में कितनी ताकत है। सारा दिन हम उसका मनन चिंतन कर सकते हैं, और सुबह सुबह में इतना आत्मा को खुराक मिल जाता है, आत्मा का फूड है, और वो भी इतना पौष्टिक खुराक मिल जाता है, शक्तिशाली खुराक हमें मिल जाता है। तो बाबा हमेशा कहते थे कि मुरली जो है वो सुबह का माजून है, माजून शब्द कहते थे। तो वो याद करती हूं तो एक सुख का अनुभव होता है कि कैसे बाबा की दृष्टि लेते थे और बाबा हमें चोली देते थे। एक बार बैडमिंटन खेलते समय हार हो गई तो बाबा ने मुझे बोला आओ बच्चे, आओ बच्ची, और डबल टोली दिया। तो वो मैं याद करती हूँ कि अरे ये तो हार में भी जीत है कि बाबा के हाथ से डबल टोली मिली, दृष्टि भी मिली गेम खेलते समय। तो हमें जीवन के अंदर जितनी सुखों की, सुख की बात है वो हमें याद करनी है, वो है सुखात्मक एकाग्रता। कोई भी दुख की बात हमें याद नहीं करनी है। फिर बाबा ने कहा है मान स्वमानात्मक एकाग्रता। रिस्पेक्ट औरों को देना है ताकि हमें भी रिस्पेक्ट मिले, तो हम एकाग्र बुद्धि ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। और स्वमान तो बाबा रोज हमें देते ही रहते हैं, स्वमान तो हमें याद रखना ही रखना है। हम पद्मा पदम भाग्यशाली है, संतुष्ट मणि है, खुशनुमा है, खुश नसीब है, खुश मिजाज है, खुश किस्मत है। कल्प कल्प के हम ज्ञानी और योगी तो आत्मा है जो परमात्मा को अति प्रिय है। कितने सारे हमारे स्वमान है, त्यागी है, तपस्वी है, सेवाधारी है, हम दानी है, वरदानी है, महादानी है, त्रिकालदर्शी है, त्रिनेत्री है, त्रिलोकीनाथ है, बाबा ने कहा। तो ये सारे स्वमान हम याद करें, वो है स्वमानात्मक एकाग्रता। उपरामात्मक एकाग्रता, उपराम करे हमारी बुद्धि को, लंगर उठा लिया हमने, कलयुगी दुनिया से। तो लंगर उछा लिया तो हमारी बुद्धि ऊपर राम की तरफ है। तो व्यक्ति वस्तु और वैभव से हमारा अटैचमेंट नहीं है, तो वो है उपरामात्मक एकाग्रता। तो ये है सारी एकाग्रता की बातें। ओम शांति। समय हो गया है, योग का समय है।